नमस्कार, स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं जनसत्ता पॉडकास्ट। वक्त है जानने का खेल जगत की खबरें। दिग्गज क्रिकेटर जियोफ्री बॉयकॉट ने इंग्लैंड को 41 साल के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन का विकल्प तलाशने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि चयनकर्ता उन्हें भावनाओं में बहकर चुनते नहीं रह सकते। जेम्स एंडरसन ने भारत के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 700 टेस्ट विकेट पूरे किए। 4 मैचों में उन्होंने 10 विकेट लिए। द टेलीग्राफ के लिए अपने कॉलम में बॉयकॉट ने कहा कि एंडरसन उस प्रशंसा के हकदार हैं जो उन्हें मिलती है। उन्होंने 187 टेस्ट खेले हैं, लेकिन उनकी उम्र के कारण उनका उपयोग बहुत कम किया जा रहा है। बॉयकॉट ने इंग्लैंड को सलाह दी कि वो एंडरसन के विकल्प के तौर पर युवा सीमर्स को तलाशें, क्योंकि इंग्लैंड की अगली बड़ी सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में होगी। तब एशेज के दौरान एंडरसन 43 वर्ष के हो जाएंगे। उन्होंने इंग्लैंड से जोश टंग और मैथ्यू पॉट्स जैसे युवा तेज गेंदबाजों को अधिक मौके देने का आग्रह किया। उन्होंने हाल ही में पिछले 1 या 2 साल के भीतर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया है। बॉयकॉट ने कहा, जिमी एंडरसन 187 मैच खेलने और 700 विकेट तक पहुंचने के लिए फिट रहने के लिए प्रशंसा के पात्र हैं, लेकिन उनकी उम्र के कारण उनका बहुत कम उपयोग किया जाता है। इंग्लैंड उन्हें भावनाओं के आधार पर चुनकर नहीं रख सकता। 1.5 साल में इंग्लैंड की अगली बड़ी चुनौती ऑस्ट्रेलिया जाकर एशेज वापस जीतने की कोशिश करना होगी। तेज गेंदबाजी शारीरिक तौर पर बहुत कठिन है। इसका असर हर गेंदबाज के शरीर पर पड़ता है। जिमी अगले एशेज तक 43 वर्ष के हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो गर्म मौसम में कड़ी मेहनत कर पाएंगे। बॉयकॉट ने कहा, इंग्लैंड को कुछ ऐसे युवा तेज गेंदबाज ढूंढने होंगे जो 20 ओवर गेंदबाजी कर सकें और अगले दिन और अधिक के लिए तैयार होकर वापस आ सकें। ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम चुने जाने से पहले उन्हें मैच दिए जाने की ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पर जोश टंग ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लॉर्ड्स में खेला और 5 विकेट लिए। वो फिर कभी नहीं दिखे। मैट पॉट्स ने 6 टेस्ट मैचों में 23 विकेट लिए हैं, लेकिन पिछली गर्मियों में आयरलैंड के खिलाफ मैच के बाद से उन्होंने कोई मैच नहीं खेला है। गुजरात जॉइंट्स ने सोमवार को यूपी वॉरियर्स को मात्र 8 रन से मात देकर सीजन में दूसरी जीत हासिल की। यूपी वॉरियर्स के लिए दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट लिए और 88 रन बनाए। हालांकि वो टीम को जीत नहीं दिला सकी। उनके इस प्रदर्शन पर 16 साल की शबनम मोहम्मद शकील की गेंदबाजी भारी पड़ी, जो कि अपनी टीम के लिए मैच निकाल ले गई। गुजरात जॉइंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 152 रन बनाए थे। इसके जवाब में यूपी वॉरियर्स की टीम 20 ओवर में 144 रन ही बना सकी। इस सीजन में ये गुजरात की दूसरी ही जीत है। 7 मैचों में से उसे 5 में हार मिली है। 53 के लक्ष्य का पीछा करते हुए यूपी वॉरियर्स की शुरुआत खराब रही। टीम ने 4 रन के स्कोर पर ही 3 विकेट खो दिए थे। शबनम ने पहले 4 रन के निजी स्कोर पर कप्तान एलिसा हीली और फिर चमारी अट्टापट्टू को बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखाया। शबनम ने श्वेता सहरावत को भी बोल्ड किया। ब्रायस किरण नवगिरे भी खाता नहीं खोल पाए। दीप्ति शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी की और पूनम खेमनार के साथ अहम साझेदारी भी की। दीप्ति ने 60 गेंदों में 4 छक्के और 9 चौकों की मदद से 88 रन बनाए। वहीं पूनम ने 36 गेंदों में 36 रन की पारी खेली, लेकिन टीम 144 रन ही बना पाई। शबनम ने 4 ओवर के स्पेल में 11 रन दिए और 3 विकेट झटके। कप्तान बेथ मूनी के नाबाद अर्धशतक से गुजरात टाइटन्स ने 8 विकेट पर 152 रन बनाए। मूनी ने 52 गेंद में 10 चौकों और 1 छक्के से नाबाद 74 रन की पारी खेलने के अलावा लारा वोलवाट के साथ पहले विकेट के लिए 60 रन जोड़कर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। इन दोनों के अलावा टीम की कोई अन्य बल्लेबाज टिककर नहीं खेल पाई और 20 रन तक भी नहीं पहुंची। यूपी वॉरियर्स की ओर से सोफी एलेक्सटोन ने 38 रन देकर 3, जबकि दीप्ति शर्मा ने 22 रन देकर 2 विकेट चटकाए। दुनिया भर में रमजान के महीने की शुरुआत हो चुकी है और मंगलवार को पहला रोजा होगा। सोशल मीडिया पर हर कोई इस मुबारक महीने की शुभकामनाएं देता हुआ नजर आया। पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम ने भी फैंस को इस महीने की मुबारकबाद दी और साथ ही गाजा के पीड़ित लोगों को भी याद किया। बाबर ने अपने ट्वीट में लिखा, आप सभी को रमजान मुबारक। इस पवित्र महीने में अपने प्रियजनों को अपने करीब रखें, विनम्रता के साथ हाथ आगे बढ़ाएं। गाजा में रह रहे अपने भाई और बहनों को अपनी दुआ में याद करें। हम सभी को साथ रहने में शांति मिले, दूसरों को देने में खुशी मिले और एकता में मजबूती मिले। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। ये पॉडकास्ट यहीं खत्म होता है। अगले बुलेटिन तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।